राघव और रचित सेलिना को ढूंढते हुए उस फ्लैट पर पहुंचे जो स्काई ने तृप्ति और सेलिना को रहने के लिए दिया था। उनकी खुशकिस्मती से सेलिना वहीं पर थी और उन्होंने उसे पकड़ भी लिया था। सेलिना के पास उनसे बचने का एक ही रास्ता था कि वो उन्हें आशी और तृप्ति के रिश्ते के बारे में बता दे, लेकिन राघव ने फिलहाल कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया था। वो सेलिना को लेकर सीधा AR अम्पायर्स जा रहा था। पूरे रास्ते राघव ने उसे गन पॉइंट पर ले रखा था। सेलिना ने बचने की पूरी कोशिश की। वो बार बार उन्हें यही कह रही थी कि वो उन्हें तृप्ति का कोई बड़ा राज बता सकती है, हालांकि सेलिना ने एक बार भी आशी का नाम नहीं लिया था। कुछ ही देर में वो उसे लेकर AR अम्पायर्स पहुंच चुके थे। उन्होंने रास्ते में ही अभिमान को AR अम्पायर्स आने के लिए कॉल कर दिया था। सेलिना को लेकर वो सीधे बेसमेंट में पहुंचे और जाते हुए उसे कुर्सी पर बिठा दिया था। राघव ने अपनी गन लोड की और सेलिना की कनपट्टी पर रखते हुए गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी माँ अपना मुंह नहीं खोल रही है। यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि इतनी मार खाने के बाद भी अपना मुंह ना खोले। पर इसे देखकर ऐसा नहीं लगता, रचित कर्तन टेढ़ी करके तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। ये अपनी मॉम जितनी मार नहीं खा पाएगी। इसके लिए वही डंडा काफी होगा जो इसने मुझे मारा था। मुझे बदला लेना है और उतनी ही जोर से इसके सर पर मारना है। उनकी बातें सुनते ही सेलिना के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव उभर आए थे। राघव और रचित ने एक दूसरे की तरफ देखा। सेलिना का चेहरा साफ बता रहा था कि उसे तोड़ना कितना आसान रहने वाला है। ठीक है, फिर ऐसा करो, वॉचमैन से जाकर उसका स्टिक ले आओ, या उसे पूछ लो कि कोई भारी डंडा मिल सकता है क्या, राघव ने रचित की तरफ देखकर कहा। रचित वहां से जाने को हुआ तभी सेलिना जल्दी से बोली, रुको रुको, तुम लोग जो पूछोगे मैं वो बताने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो उल्टा मॉम को रोकना चाहती थी। अगर ऐसा है तो सब कुछ सच सच बताओ, दरवाजे से अभिमान की आवाज आई जो अभी अभी वहां पर पहुंचा था। अभिमान के चेहरे के भाव सख्त थे और वो सीधा चलकर उनके पास आया। अभिमान सेलिना के सामने लगी कुर्सी पर पैर पर पैर रखकर बैठ गया था। आखिर क्या प्लान था तुम लोगों का और कौन कौन तुम्हारे साथ थे, अभिमान ने सीधे सीधे पूछा। सेलिना की नजरें नीची हो गई थी। कोई भी जवाब देने की वजह वो सुबकते हुए रोने लगी थी। उसका रोना उन्हें और इरिटेट कर रहा था। अभिमान चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारे इन आंसुओं का कोई असर नहीं होने वाला है। जितना जल्दी मुंह खोलोगे उतना ही अच्छा है। मैं यहाँ तरीके से बात कर रहा हूँ, वरना इस वक्त तुम्हें मेरे पास नहीं, मिस्टर सिंघानिया या फिर पृथ्वी के पास होना चाहिए था। वो टॉर्चर करने में ज्यादा अच्छे हैं। सेलिना ने जल्दी से नामे सिर हिलाया और कहा, नहीं रुको, मैं बताती हूँ। शुरू से बताओ और मुझे सब सच सुनना है। आखिर इन सब की शुरुआत कैसे और क्यों हुई, अभिमान ने पूछा। सेलिना के सामने मुंह खोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी उनके सामने हार मान जाएगी, लेकिन सेलिना हमेशा से ही एक कमजोर कड़ी रही थी। मैंने LA में बिजनेस शुरू किया था। वो एक लग्जूरियस सेल्फ ग्रूमिंग स्पा था। हमारे साथ कुछ एस्कॉर्ट्स भी काम करती थी, जिसकी वजह से काम काफी अच्छे से चल रहा था। एक बार मिस्टर स्काई वहां पर आए और उन्हें हमारा बिजनेस प्लान अच्छा लगा था। मैंने उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए कहा और इसी तरह का एक बड़ा स्पा ओपन किया था, लेकिन वहां पता नहीं कैसे पुलिस की रेड पड़ गई थी और उससे जुड़े हमारे सारे बिजनेस बंद हो गए थे। ड्रग्स भी पकड़े गए थे। मिस्टर स्काई का बहुत नुकसान हुआ था। उन्होंने पैसे भी इन्वेस्ट किए थे और हमने उनसे लोन भी लिया था। सेलिना उन्हें शुरू से पूरी कहानी बताने लगी जो उन्हें कभी पता नहीं थी। तो पैसे ना देने की सूरत में तुम लोगों ने आशिका का सौदा किया, अभिमान गुस्से में दांत भिंचते हुए बोला। ये मॉम का प्लान था। वो जानती थी कि मिस्टर स्काई की कमजोरी क्या है। जब उन्होंने आखिर में हमें पैसे देने के लिए एक हफ्ते का टाइम दिया, तब मॉम ने उन्हें आशिका की फोटो दिखाई थी और उससे उनकी शादी करने का कहा। वो उन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। हमारा उसके साथ कुछ खास कॉन्टैक्ट नहीं था। ऊपर से मॉम जब भी उससे मिलने जाती तो उससे बुरा बर्ताव करती। मॉम ने उसे फैमिली गैदरिंग और एक शादी अटेंड करने का बोलकर बुलाया और उसे सीधा मिस्टर स्काई के पास पहुँचा दिया था। उस दिन उनकी शादी होने वाली थी, पर अचानक उसके शादीशुदा होने का राज सामने आया, सेलिना ने बताया और फिर अपनी नज़रें नीचे कर ली थी। अभिमान को अच्छे से याद था कि उसे भी उस रात उसके आदमी का कॉल आया था और आकाश की दूसरी शादी करने की बात पता चली थी। साथ ही उस आदमी ने यह भी बताया था कि वो शादी किसी वजह से नहीं हो पाई थी। अभिमान ने यही सोचा था कि वो उस लड़की तक पहुंचने की कोशिश करेगा और फिर उसका सहारा लेकर आकाश को ब्लैकमेल करेगा। अभिमान ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्से के गहरे भाव थे। उसने आगे पूछा, अब क्या प्लान था तुम लोगों का और इसमें कौन कौन शामिल थे? मुझे हर एक शख्स का नाम जानना है। मैंने नहीं, मॉम ने प्लान बनाया था। इस बार मैंने उन्हें रोका भी था, सेलिना जल्दी से बोली। वो ये जाहिर कर रही थी कि इस बार उसकी कोई गलती नहीं थी। अभिमान के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट उभर आई। उसने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी खुद के इनोसेंट कहने से तुम इनोसेंट प्रूफ नहीं हो जाओगी। इन सब की शुरुआत तुमसे ही हुई थी, तुम लोगों ने हमेशा उसका इस्तेमाल किया है। सेलिना की नजरें छुप गई थी। अभिमान गलत नहीं कह रहा था। यहाँ आने से पहले उन्होंने कभी आशिका को इंसान भी नहीं समझा था। हाँ, ये बात अलग थी कि यहाँ आकर आशिका से मिलने के बाद सेलिना में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। जानती हूँ गलती मेरी है, पर इस बार सच में मैंने मॉम को समझाया था। उन्होंने यही प्लान किया था कि वो कैसे भी करके आशिका को अकेले में मिलने के लिए बुलाएगी और फिर उसे मिस्टर स्काई के साथ हमेशा के लिए यहाँ से भेज देगी। आशिका के जाने से हर कोई खुश था, खासकर तुम्हारी मॉम। अगर उस दिन वो तुम्हें लेकर हॉस्पिटल नहीं जाती तो आशिका का हमारे पास आना लगभग इम्पॉसिबल था, सेलिना बोली। एक पल के लिए वहाँ बिल्कुल खामोशी छा गई थी। सेलिना ने आगे कहा, तुम्हारी खुद की मॉम उससे नफरत करती है। वो तुम दोनों को साथ नहीं देखना चाहती और वो पूरे प्लान के बारे में हमेशा से जानती थी। उन्हें पता था कि आशिका उन्हीं के पति के पास जाने वाली है। अपना मुंह बंद रखो और जितना पूछा है उतना बताओ, अभिमान चिल्लाकर बोला। उसे ये सोचकर भी गुस्सा आ रहा था कि निशा आशिका से इतनी नफरत क्यों करती है। अगर निशा ने उस दिन उनकी बातों में आकर बेवकूफी नहीं की होती तो सच यही था कि आशिका आज उसके पास होती। बताओ तुम्हारे प्लान में कौन कौन शामिल था, राघव ने सेलिना की कनपट्टी पर गन को दबाते हुए बोला। मेरी मॉम और निशा राजवंश, साथ में मैं भी। मॉम कुछ भी करके तुम दोनों को अलग करना चाहती थी, ताकि, बोलते हुए सेलिना रुक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आशी के बारे में उन्हें बताएं या ना बताएं। आशी का राज काफी मायने रखता था। जिस तरह से अभिमान गुस्से में था, उससे लग नहीं रहा था कि सच जानने के बाद भी वो सेलिना को जाने देगा। ताकि क्या, रचित ने उसे घूरते हुए पूछा। तुमने रास्ते में कहा था कि तुम कोई जरूरी राज बताने वाली हो और इन सब बातों में ज्यादातर चीजें हम जानते हैं। हाँ, बस तुमने क्या ब्लंडर किया ये हमारे सामने अब आ रहा है, पर ये कुछ खास नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो तुम जानती हो और फिलहाल बोलते हुए रुक गई हो। अगर मैं बताऊंगी तो क्या तुम लोग मुझे जाने दोगे, सेलिना ने हड़बड़ाकर पूछा।
तुम निगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं हो, तुम नहीं भी बताओगी तो मैं पता लगा लूंगा कि मेरे और आशिका के अलग होने में तुम लोगों का क्या फायदा था, अभिमान ने बिना किसी भाव के कहा और यही जताया कि सेलिना का जरूरी राज उसके लिए मायने तक नहीं रखता है। अभिमान उठकर वहां से जाने को हुआ तभी सेलिना जल्दी से बोली, मॉम तुम दोनों को इसीलिए अलग करना चाहती थी ताकि आशी तुमसे शादी कर सके। इन सब में आशी का नाम आना उन्हें हैरान कर रहा था और वो सब आंखें फाड़कर सेलिना की तरफ देखने लगे। तुम आशी का नाम ले रही हो जो मिस्टर सिंघानिया की बेटी है, वो तुम लोगों का साथ क्यों देगी, जबकि उसे अच्छे से पता है कि मिस्टर सिंघानिया तृप्ति बजाज से नफरत करते हैं। गेम खेलने की कोशिश कर रही हो कोई, अभिमान ने सख्त आवाज में कहा। अभिमान के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि उनके प्लान में आशी उनका साथ दे रही थी। सेलिना ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ये सब आशी की वजह से ही हो रहा था। वो नहीं चाहती थी कि आशिका सिंघानिया फैमिली में जगह ले। अगर सिंघानिया फैमिली की असली बेटी वहां आती तो उसे वहां से जाना पड़ता। तो क्या तुम सब लोग पहले दिन से जानते थे कि आशिका ही सिंघानिया फैमिली की बेटी है, अभिमान अविश्वास से बोला। सेलिना ने हल्के से सिर हिला दिया था। इस वक्त अभिमान के गुस्से से मुठ्ठियां कसी हुई थीं। आशुतोष आशी से ये छुपाना चाहते थे कि उन्हें उनकी बेटी आशिफा मिल गई है ताकि उसे बुरा ना लगे, जबकि सच तो ये था कि आशी पहले से ही सारा सच जानती थी। उल्टा वो ये कभी नहीं चाहती थी कि आशिका का सच सामने आए। अभिमान को सच में इस वक्त बड़ा झटका लगा था। वो बिल्कुल चुप खड़ा था। रचित और राघव उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। अभिमान आगे कुछ पूछने की हालत में नहीं था। राघव ने सेलिना की तरफ देखा और गन लोड करते हुए बोला, अब मैं जो पूछूं उसका जवाब मुझे सीधे सीधे चाहिए। मैं शूट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि सारी जरूरी बातें हम जान चुके हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं अगर तुमने सच बताया तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। आशी तृप्ति बजाज को कैसे जानती है, उसे कैसे पता चला कि आशिका ही सिंघानिया फैमिली की बेटी है, सेलिना ने अपना थूक निकला। ये सच में एक बड़ा राज था और इसके बाद उन सब की दुनिया बदलने वाली थी। सेलिना ने सिर उठाकर राघव की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, वो तृप्ति बजाज को इसीलिए जानती है क्योंकि वो उसकी रियल मॉम है। आशी को नहीं पता था कि आशिका जिंदा है, मेरा यकीन करो। मुझे भी नहीं पता था कि मॉम की कोई रियल बेटी भी है। उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी को आशिका की जगह प्लांट किया था और आशिका को मारने के लिए किडनैप किया गया था। मॉम ने यही बताया था कि उसकी मेमोरी जा चुकी थी, तो उनके पास अच्छा मौका था मिस्टर और मिसेस सिंघानिया की बेटी को तकलीफ देने का, इसलिए मारने के बजाय वो उसे अपने साथ ले गई। ये सारी प्लानिंग मॉम ने अपनी रियल बेटी आशी के लिए की थी। जैसे ही सेलिना ने अपनी बात खत्म की, अभिमान कुछ कदम लड़खड़ा गया था। तृप्ति और आशी पहले दिन से आशिका की जिंदगी के साथ खेल रही थी। ये सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा था। अभिमान आशी को पहले से ही नापसंद करता था, लेकिन अब उसे उससे नफरत हो रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आशी उनके साथ इतना सब कुछ प्लान कर रही है। चलो भाई, अभिमान के सामने पूरा सच आ गया है और देखते हैं उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।